समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आपके लिए देश विदेश के ताजा समाचार, क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल की गतिविधियों पर नजर हमारी रहेगी ही, आर्थिक जगत में आज कारोबार कैसा रहा उस पर भी हम एक नजर अपनी रखेंगे कि कौन सा शेयर बढ़ा, कौन सा शेयर डाउन हुआ, और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में नाटकों का एक अपना ही अलग स्थान है, तो डेट लाइन में आज हम कुछ ऐसी ही चर्चा करेंगे और बताएंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने जिंदगी में जितने भी अभिनय किए वो इतने सक्सेसफुल हुए कि कहीं ना कहीं वो आज आपकी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। बहरहाल, आज के इस अंक में मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो नवीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नवीन सक्सेना। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Filing of nominations for the first phase of Lok Sabha elections to end this evening. Notification for second phase to be issued tomorrow.
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा, बालाकोट जैसे ऑपरेशनों से पता चला है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर एयरोस्पेस पावर को शत्रु के क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
6 Maoists killed in a gun battle with security forces in Bastar Division of Chhattisgarh.
और भारत ने इस वर्ष मार्च में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके एशियाई बाजारों को पीछे छोड़ दिया है।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, सनराइजर्स हैदराबाद टू टेक ऑन मुंबई इंडियंस दिस इवनिंग। एंड नवीन, इट्स टाइम नाउ फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडियन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड थिएटर डे। एंड नवीन, in a world filled with screens and pixels, the beauty of theater lies in its ability to transport us to another realm where imagination takes flight and emotions stir, from the hushed whispers before the curtains rise to the thunderous applause that follows. Theater captivates hearts and minds like no other art form, and dating back a few thousand years, theater is a unique and interesting part of culture that has certainly evolved over time. The word theatre gets its roots from an ancient Greek word that means a place for seeing, and the definition continues to be meaningful today.
आज विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे है। 27 मार्च आज के दिन मनाया जाता है। स्थापना की बात करें तो 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अभिषेक, रंगमंच समाज की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करती है। रंगमंच शांति और सामंजस्य की स्थापना का एक ताकतवर औजार है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों और मंडली से देश प्रेम और नव जागरण की चेतना ने तत्कालीन समाज में उद्भव की थी, जो आज भी अविरल है। और अगर भारतीय नाटकों की बात करें, अंधेर नगरी ऐसा नाटक जिसे कई बार वंचित होने के बाद भी उतने ही उत्साह के साथ देखा जाता है। कालिदास महान नाटककार थे। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, धर्मवीर भारती का अंधा युग, विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल उन श्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में है जिन्हें हम कभी भी देख सकते हैं, कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि अगर भारत में नाटकों की शुरुआत की बात करें तो नील दर्पण, चाकर दर्पण, गायकवाड़ और गजानन एंड द प्रिंस नाटकों की इस विधा ने रंग पकड़ा। और अभिषेक, चाहे लेखन हो, निर्देशन हो, निर्माण हो, अभिनय हो, सुंदर वेशभूषा बनाना या फिर लाइट का व्यवस्था हो, दृश्य डिजाइन करना हो, थिएटर कला का एक ऐसा माध्यम है जिसने विभिन्न तरीकों से शामिल प्रतिभाशाली कलाकारों को एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। और थिएटर में न सिर्फ वो कलाकार जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं उनका ही काम होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में यानी जो थिएटर में पीछे से काम करते हैं, जो मंच के पीछे होते हैं, उनका भी अपना पूरा योगदान होता है। और विश्व रंगमंच दिवस उन लोगों की सराहना दिखाने के लिए है जो कि शो को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय और प्रतिभा देते हैं।
Yes, like very rightly said, Naveen, and you must have noticed if you've gone to watch a play, that every production is a labor of love, with directors, actors and crew members pouring their hearts and souls in creating moments of sheer brilliance. And in addition to some of the famous Indian playwrights that you mentioned, Naveen, I'd like to mention here what Shakespeare, the master playwright, once said. He said, "All the world's a stage, and all men and women merely players." And Naveen, these words echo through the centuries, reminding us of the universal nature of theatre. It is a mirror held up to humanity, reflecting our joys, sorrows, and everything in between. And even after so many centuries, theatre continues to be used as a way to not only tell stories and see things, but to make an impact on culture and society at large.
Rangmanch apne aap mein ek duniya hai. रंगमंच वो है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जिंदगी का सार बताता है. और हाँ, यहाँ पे कभी भी शॉर्ट रिपीट नहीं होता अभिषेक. आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना, सिंगल कट में करना होता है. आपको हंसना है, मुस्कुराना है, डायलॉग है, और यहाँ तक कि आपकी आवाज और आपका अभिनय सब में सामंजस्य होता है. आपके चेहरे के हाव भाव सामने बैठा दर्शक पढ़ता है, और आप अपनी आवाज से ही उसको बता पाते हैं कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं. और हाँ, रंगमंच की दुनिया में थिएटर पे जब तरह तरह की लाइटें होती है ना, तरह तरह का प्रकाश होता है, उसी से हमें समझ में आता है कि हाँ, अब नाटक का जो कलाकार है वो दुखी है, या वो बहुत हंसता है, या वो बहुत अपने आप में महसूस करता है. और रंगमंच की दुनिया भर में कला, संस्कृति और परंपरा को दिखाने में सबसे प्रमुख तरीकों में से एक है. अलग अलग नाटक के मंचक द्वारा सामाजिक बुराइयों और समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है. और आज का दिन थिएटर आर्ट्स के महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है.
यस, वर्ल्ड थिएटर डे इन 2024 इज नाउ इन 62nd एडिशन, एंड फॉर द ओकेशन द मैसेज एंटाइटल्ड आर्ट इज पीस वाज रिटन बाय जॉन फॉसे, नॉर्वेजियन राइटर एंड प्लेराइट, एंड स्ट्रांगली एंड प्रोफाउंडली रिकॉल्स द फाउंडिंग वैल्यूज ऑफ थिएटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल कम्युनिटी, एम्फसाइजिंग द पीसफुल एंड यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ आर्ट.
और आज वर्ल्ड थिएटर डे के दिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि फिल्म जगत के कुछ जाने माने चेहरे शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, शबाना आजमी, मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, राधिका आप्टे, अनुपम खेर, ये तो वो लिस्ट है जो कभी खत्म नहीं हो सकती. ऐसे बहुत से कलाकार हैं और कई दिग्गज अभिनेताओं ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी, जो आज सुपरस्टार बन चुके हैं. और ये दिन थिएटर और स्टेज के सभी रूपों और अभिनेताओं को सम्मानित करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. शुरुआत जिंदगी के रंगमंच पर आधारित राजेश खन्ना के इस डायलॉग से करते हैं.
जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पड़ा उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं. हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है. तब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है.
भले ही हम सब कठपुतलियां और रंगमंच की सभी डोर ऊपर वाले के हाथों में है, लेकिन फिर भी जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो बहुत कुछ हमें सीखना पड़ता है. उन अदाओं को सीखना पड़ता है, उन भावों को सीखना पड़ता है. और इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक की. दोनों ही बेहतरीन कलाकार हैं, पति पत्नी भी हैं, और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से की थी. और दोनों ने एक साथ कई नाटक किए, कई नाटकों का हिस्सा थे. इरफान खान को हम कभी नहीं भूल सकते, हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार हैं, और उन्होंने रविंद्र मंच से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. और भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने लोगों के मन में जो छाप छोड़ी वो अमिट है. ओम पुरी एक ऐसा कलाकार जिसने अपने एक्टिंग करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, और उन्होंने न कई अवार्ड भी कमाए हैं, और बचपन से अपने पिता की तरह आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनकी रुचि थिएटर यानी एक्टिंग में हो गई और उससे उनका अभिनय चमक उठा. और अब बात फेवरेट राजकुमार राव की.
अशोक, अशोक
जी साहब,
दो कप चाय लाइए.
ओके साहब.
क्या कहते हैं आप अगर इतनी सॉरी थी तो आपने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? कितने फोन किए थे हमने आपको उस दिन? पता है हमें लगा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, और आज जब तुम्हारा केस हमारे अंडर आ गया है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है. हा? और हम यहाँ नहीं आते तो तुम हमारे बारे में सोचती भी नहीं कभी, है ना? तब भी प्रैक्टिकल थी, अब भी बहुत प्रैक्टिकल है, बस अभी थोड़ी हॉट हो गई है. ऑफिसर आरती शुक्ला, वेरी टेम्प्टिंग, डिजायरेबल. आर यू फीलिंग ऑकवर्ड? अब इतना सदस्य कहेंगे तो हम तो क्या हिमालय भी पिघल जाएगा, है ना? चलो पहले तुम पर्पज के लिए वो करे थे ना, चला शब्द दो क्विकली.
सचिंद्र.
और अब बात रंगमंच साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देता है। जो छात्र थिएटर से जुड़े हैं उन्हें पढ़ाई में और स्कूल में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का एक हिस्सा ऐसा है जहां आपको तमाम कलाकार एक ही जगह बैठे हुए मिल जाएंगे और वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ठीक पास मंडी हाउस, जहां पर आपको वो तमाम कलाकार मिलेंगे जो आज एक बेहतरीन राह की ओर गुजर चुके हैं।
Yes, so let's also talk about the importance of theatre in the world today, Naveen. Live theatre helps promote social dialogue, discourse and possibly social change. Theatre can be used to identify and address problems, listen to opposing points of view and create opportunities for self-examination.
थिएटर आर्टिस्ट की बात हो तो शाहरुख खान का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देश के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान ने भी अपने करियर की शुरुआत थिएटर से ही की थी। आइए सुनते हैं उनका भी एक बेहतरीन संवाद।
बधाई हो मिस्टर शंकर, यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती, शायद इनको भी मालूम है कि आपको परिवर्तन पसंद है। आपके डर की ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।
आप ही ने मुझे बताया था कि लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए मिस्टर आर्यन, कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी।
नो 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 मिस्टर शंकर, आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी, मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। मोहब्बत अगर चाहे तो इस एक पत्ते के सहारे आपकी इमारत की हर एक ईंट को हिलाकर रख दे।
Let's have an interesting question and answer round on this. And Naveen, sometimes I wonder, can theatre change the world? What's your answer?
Okay, अभिषेक, सदियों से रंगमंच सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा रहा है, जागरूकता बढ़ाता है और लोगों को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए।
Now, can theater help with anxiety?
बिल्कुल, एक अध्ययन से ये भी पता चला है कि सामाजिक चिंता से जूझ रहे कई व्यक्ति ऐसे हैं जो काम चलाओ रंगमंच भी करते हैं ना, तो भी वो जिंदगी में उनके बहुत मददगार होता है।
कैन वी से द थिएटर इज अ स्पोर्ट?
अब ये जरूरी नहीं है कि एथलेटिक नहीं है, लेकिन कुछ लोग थिएटर को एक टीम की तरह मानते हैं और इसको एक खेल की तरह खेलते भी हैं, लेकिन ये भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।
So, Naveen, in a world that often feels fragmented and disconnected, theater serves as a unifying force, bringing people together in the communion of storytelling. So let us embrace the beauty of theater, for it is a beacon of light in the darkness, a refuge for the soul and a celebration of the human spirit.
और अगर आप दिल्ली में हमें सुन रहे हैं ना, तो आज का न्यूज़पेपर उठाइएगा, बहुत से नाटक इस समय मंचित होंगे। शाम को 6 बजे के बाद से मंडी हाउस आइए, तमाम थिएटर वहां आसपास है। और हाँ, एक बार ये भी देखिए कि ये लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, फिर देखिए एक ना एक दिन आपका मन तो जरूर करेगा कि कम से कम एक नाटक में तो मैं भी एक्टिंग कर ही लूं। और अब समय अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है परिक्रमा के अगले चरण में।
नागालैंड होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 फ्रॉम 18 टू द 23rd ऑफ मार्च 2024 एंड नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द गेम्स ओपन एट द रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सलेंस सोवीमा। द सिक्स डे एक्सिलरेटिंग गेम्स विटनेस्ड अराउंड 3,000 participants from the 8 Northeast region competing in 15 disciplines. The events were held at 12 venues across 3 districts, Chumoki Dima, Dimapur and Kohima. The games included archery, athletics, badminton, basketball, boxing, football, lawn tennis, pancake silat, sipak crow, table tennis, taekwondo, volleyball, wushu, wrestling and belt wrestling. Let's hear more from our correspondent Asuno.
Manipur contingent took home the coveted trophy after emerging as the overall champion of the third Northeast Game 2024, cementing their legacy as a champion of the first two editions. Manipur won a remarkable total of 130 medals, including 52 gold, 38 silver and 40 bronze. Hosted Nagaland with an impressive performance throughout the event, fought heroically to claim the second position in the medals tally, securing a total of 134 medals with 48 gold, 42 silver and 44 bronze medals. Nagaland's ascent from the top 5 in previous games to the top 2 in the third edition of Northeast Games will reflect the remarkable sportsmanship and growth of sports in the state. Meanwhile, Assam displayed commendable resilience and skills, securing third with a total of 139 medals with 43 gold, 44 silver and 52 bronze medals. Assam's journey to the top spot was intense until the very last game, demonstrating the competitive spirit and dedication of their athletes. The Fair Play Trophy was awarded to Sikkim for displaying exemplary sportsmanship and conduct throughout the game. To put up back the spirit of Olympic Trophy for embodying the value of sportsmanship, unity and excellence. With participation from all states of the Northeast region and competing in various disciplines, this game has not only promoted sports but also fostered a sense of unity and camaraderie among the states of the Northeast. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
कोहिमा के बाद अब सीधा गुजरात आपको लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गुजरात में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने बताया कि राज्य के 50,600 से अधिक मतदान केन्द्रों पर मतदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं और एक भी मतदाता इस प्रक्रिया में छूटे नहीं। इसके लिए गिर के जंगल या आलिया बेट, शियाल बेट जैसे पानी से घिरे हुए दुर्गम इलाकों में भी मतदान के लिए विशिष्ट केंद्र जो है वो बनाए जा रहे हैं। सीधा अपने सहयोगी अपर्णा के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ और खास है उनके पास।
गुजरात में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी और 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने बताया कि राज्य के 50,600 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक भी मतदाता इस प्रक्रिया से छूटे नहीं। इसके लिए गिर के जंगल या आलिया बेट, शियाल बेट जैसे पानी से घिरे हुए दुर्गम इलाकों में भी मतदारों के लिए विशिष्ट मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
इस चुनाव के लिए समग्र चुनावी तंत्र पूरी तरह से तैयार है। 5 जनवरी को जारी की गई फाइनल पब्लिकेशन मतदार यादी सूची में राज्य के 4.95 करोड़ से अधिक मतदाता दर्ज है। ये सभी मतदाता सुगमता से मतदान करें, इसके लिए राज्य में कुल 50,677 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। राज्य के कुल मतदान केंद्रों में 25,000 से अधिक मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी। 4.5 लाख से ज्यादा ट्रेंड कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे। चुनाव खर्च पर नजर रखने और नियंत्रण में रखने के लिए कुल 756 फ्लाइंग स्क्वाड, 206 अकाउंटिंग टीम, 251 वीडियो टीम, 480 वीडियो सर्वेलेंस टीम को भी कार्यरत किया गया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल है। राजकीय दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा व्यापक जनजागृति कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी 26 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार फिर से गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इस बार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया को भी राजकोट और पोरबंदर सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल नवसारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपरा सहित कई मौजूदा सांसदों को पार्टी ने टिकट नहीं दी है। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है। उनके सीट शेयरिंग फॉर्मूला के मुताबिक गुजरात की भरूच और भावनगर इन दो सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 24 सीटों के ऊपर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंट।
Now we go over to Cuttack and voting for the simultaneous elections in Odisha will be held from the fourth phase to seven phases starting from the next month, that is 18th. The election commissioner is scheduled to conduct voting for 21 Lok Sabha and 147 assembly seats in the state. We have more from our Cuttack correspondent.
Election activities are gaining momentum in the state as the BJP declared the name of 18 Lok Sabha candidates out of 21 seats while dropping 4 sitting MPs from the list. Union Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan will be contesting from Sambalpur constituency, whereas Senior Party Spokesperson Dr. Sambit Patra has been fielded from Puri and Bajant Jayapanda from Kendrapada seat. 3 seats are yet to be declared from the BJP party. On the other side, neither ruling party BJD and opposition Congress has announced their candidates' name for Lok Sabha Assembly seat. See Vigil App, Suvidha Portal, Candidate Affidavit Portal, Know Your Candidates, Voter Services Portal, Voter Helpline App are put on place for smooth conducting of election in the state. Tapan Moharana, Akashwani News, Kottak.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember revolutionary freedom fighter Jogendra Chandra Chakrabarti, alias
Hirendra Jeevan Ghosh, a resident of Maimonsingh, now in Bangladesh. Chakravarti was a member of the Dhaka Anushilan Samiti. He was involved in the Sonarang postal peon assault and theft case, for which he was sentenced to 8 months rigorous imprisonment.
In 1913, Jogendra Chandra took part in the plan to kill Gordon, sub-divisional officer of Silhet. Unfortunately, the bomb he was carrying to Gordon's bungalow to execute the plan on the 27th of March 1913 exploded in his own hands and killed him. We pay tributes to the great martyr.
We also remember social reformer Sir Syed Ahmed Khan, who died on the 27th of March 1898. Sir Syed was one of the greatest social reformers and a great national builder of modern India.
He instituted Scientific Society in 1863 to instill a scientific temperament into the Muslims and to make the Western knowledge available to Indians in their own language.
In 1875, Sir Syed founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh, now Aligarh Muslim University, and patterned the MAO College after Oxford and Cambridge universities. He wanted his college to act as a bridge between the old and the new, the East and the West.
The Aligarh movement helped infuse social and political sensibility into people across the nation.
Sir Syed contributed many essential elements to the development of the modern society of the subcontinent. We salute the great reformer.
We also remember nationalist Lakshmi N. Menon, who was born on the 27th of March 1899 in Thiruvananthapuram, Kerala. A teacher, lawyer, politician and activist, Lakshmi was influenced by Gandhian thoughts and wore only khadi clothes. Lakshmi N. Menon went to England for higher studies. She went to Moscow in 1927 to attend the 10th anniversary celebrations of the Soviet Union as a member of the student delegation. In Moscow, she met Jawaharlal Nehru, who inspired her to join politics.
She was nominated to the Committee on Status of Women at the United Nations and was head of the Indian delegation to the UN General Assembly. She was elected as a Rajya Sabha member in 1952, 1954 and 1960. She served as Minister of State with independent charge of external affairs. Her tenure was instrumental in setting up the Tumba Equatorial Rocket Launching Station at Thiruvananthapuram. She played a vital role in shaping the foreign policy of India.
When China attacked India, she travelled across many countries as India's roving ambassador to clarify India's stand among the global community. She was also involved in setting up the Indian Space Research Organization in Kerala.
After retiring from political activities in 1967, Lakshmi Menon turned to social work and writing. Lakshmi Menon died on the 30th of November, 1994. We salute the great daughter of India.
In business news today, Indian benchmark indices ended on a positive note with Nifty above 22,100. Amid mixed global cues, the market opened on a positive note and extended gains as the day progressed. At close, the Sensex was up 526 points, or 0.73% at 72,996. And the Nifty climbed 119 points or 0.54% at 22,123.
और अब पलटते हैं परिक्रमा का एक और पन्ना और नजर खेलों की दुनिया में. क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा और मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. परिक्रमा में अब बात उन व्यक्तित्व की और उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आज के दिन से. अभिषेक.
यस, एंड क्विंटन जेरोम टेरेंटिनो वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1963. ही इज एन अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड एक्टर. टेरेंटिनोज पैशन फॉर फिल्म मेकिंग वाज एविडेंट फ्रॉम अ यंग एज एंड ही होन्ड हिज स्किल्स बाय वर्किंग इन अ वीडियो रेंटल स्टोर. हिज फिल्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टाइलाइज्ड वायलेंस, एक्सटेंडेड डायलॉग एंड रेफरेंसेज टू पॉपुलर कल्चर. Tarantino began his career as an independent filmmaker with the release of the crime film Reservoir Dogs in 1992, his second film Pulp Fiction 1994, a dark comedy crime thriller. was a major success with critics and audiences, winning numerous awards including the Palme d'Or and the Academy Award for Best Original Screenplay. In 2003, Tarantino directed Kill Bill Volume 1, inspired by the traditions of martial arts films. It was followed by Volume 2 in 2004, with both volumes combined, regarded as a single film.
आज प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवाद विद्वान लीला दुबे की भी जयंती है. महिला अध्ययन को लेकर प्रसिद्ध लीला जी ने कई पुस्तकें लिखी जिनमें लिंग भाव का मनोवैज्ञानिक अन्वेषण उल्लेखनीय है.
मरिया कैरी वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1969. शी इज एन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस रेफर्ड टू एज अ सॉन्ग बर्ड सुप्रीम बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. शी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इन म्यूजिक हिस्ट्री. She is noted for her songwriting, 5-octave vocal range, melismatic single style and signature use of visual register. Let's listen in to her hit song, All I Want for Christmas Is You.
और अब बात करते हैं यूरी गैगरिन के बारे में, जिन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में मानव उड़ान के युग की शुरुआत की थी. उनका निधन आज ही के दिन सन 1968 में हुआ था. तत्कालीन सोवियत संघ में रूस में उनका जन्म हुआ था. यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और यूरी गैगरिन को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब भी दिया गया था और इन्होंने वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अपनी यात्रा की थी.
Stacey Ann Fergie Ferguson was born on this day in 1975. She is an American singer, songwriter, rapper and actress. She first achieved chart success as part of the hip-hop group The Black Eyed Peas. Her debut solo album The Duchess in 2006 saw commercial success and spawned 3 Billboard Hot 100 number singles. Let's listen in to a hit track, London Bridge.
आज रेणुका शाहनी का भी जन्मदिन है. 1966 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था. भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था. अगर उनकी सबसे सही फिल्म की बात करें या फिर सबसे सही को प्रेजेंटर की बात करें तो वो था दूरदर्शन पर उनका सीरियल सुरभि, जो 1993 से 2001 के बीच आया था, जिसमें वो एंकर थी और उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से भी अब तक सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड मराठी शामिल है.
Konidela Ramcharan was born on this day in 1985. He is an actor, producer and entrepreneur who primarily works in Telugu cinema. He is one of the highest paid actors in Indian cinema. And Charan is the recipient of several awards, including 3 Filmfare Awards and 2 Nandi Awards. Charan made his acting debut with action film Chirutha in 2007, a box office hit, winning the Filmfare Award for Best Male Debut South. He rose to prominence starring in S.S. Rajamouli fantasy action film Magadhira in 2009, the highest grossing Telugu film of all time, at the time of his release winning the Filmfare Award for Best Actor Telugu. He went on to star in many other notable films.
और अब जिक्र भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री प्रिया राजवंश का. आज इनकी पुण्यतिथि है. प्रिया राजवंश ने सिर्फ चेतन आनंद की बनाई फिल्मों में ही अभिनय किया था और उन दिनों चेतन आनंद अपनी एक नई फिल्म के नए चेहरे की तलाश थी और वो फिल्म बनाना चाहते थे. हकीकत, प्रिया राजवंश से संपर्क किया, नायिका के लिए चुन लिया गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. हीर रांझा, हंसते जख्म, हिन्दुस्तान की कसम उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में हैं. एक गीत उनके लिए. परिक्रमा के आज के इस अंक में बस इतना ही. अपने एडिटर नीलम और प्रोडक्शन असिस्टेंट ज्योत्सना के साथ मुझे नवीन और अभिषेक को दीजिए इजाजत. आज के इस अंक को यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.